الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم پیج نمبر 505 کی پہلے پیراگراف پہ پہنچے تھے نا. ساتویں صفت ابھی ہم نے شروع نہیں کری تھی پڑھنی یا کر چکے تھے. ہاں, شرک کے بارے میں ڈسکشن ہم نے شروع کر دی تھی. تو یہ جو ساتویں صفت ہے اس آیت کے اندر, وہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ کہ پہلی چھ صفات میں طاعت و فرما برداری کے اصول آ گئے ہیں. اب معصیت و نافرمانی کے اصول مہمہ کا بیان ہے. مہمہ کا مطلب اہم, جو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ان کو مہمہ بھی کہتے ہیں. تو بہت ہی اہم اصولوں کا معصیت و نافرمانی کے یہاں پر بیان ہے, جن میں پہلی چیز عقیدے سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے, جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا. ٹھیک ہے, تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے اور وہ جیسے دوسرے گناہ کرتا ہے تو کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں, تو شرک بھی اس میں سے ایک بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے, یہ باقی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا گناہ خارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ بندہ اب کافر ہو جاتا ہے, اس کے رہن سہن سے اور نام سے اور یعنی خاندان سے, خیش قبیلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا ہے تو وہ یعنی غیر مسلم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہماری جو بات پچھلے ہفتے چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ شرک کی نفرت بھی دل کے اندر ہونی انتہائی ضروری ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارا کچھ واسطہ غیر مسلموں کے ساتھ پڑھنا شروع ہو کام کاج کے اوپر یا اپنے تعلیمی اداروں کے اندر, تو ہم ان کے شخصیت کے اچھے پہلو سے متاثر ہو کر کے ان کے شرک کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ تو اتنے نائس لوگ ہیں تو یہ کیوں جہنم میں جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے عبادت کرتے ہیں. اس وقت یہ نہیں کہتے کہ صرف اس وجہ سے کہ یہ شرک کرتے ہیں, بلکہ اس وقت شیطان زبان پہ کیا الفاظ لاتا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ بھئی یہ ایک مختلف طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ایک مختلف طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ جہنم میں جائیں گے حالانکہ اتنے نائس لوگ ہیں, اور ہم جنت میں جائیں گے حالانکہ ہم اتنے برے لوگ ہیں. تو اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے, اور اس طریقے سے نا انسان شرک کی جو ہے نا وہ کی برائی کو کم کرتا ہے اور نرم گوشہ پیدا کرتا ہے, اور نرم گوشہ پیدا ہونے کے بعد پھر انسان پھر آہستہ آہستہ ان کے دین کی طرف بھی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر ان کے اعمال بھی ان کے تہوار بھی اپنانا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بات جو ہے نا وہ دل کی یعنی ذہن کی سوچ سے سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, دل کے مائل ہونے سے یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے. ठीक है, तो इस वजह से ना इस इन इन बातों के बारे में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि इस दौर इस जमाने में जो हम जिंदा हैं ना दुनिया के अंदर, तो पहली बात तो ये कि मुसलमान पूरी दुनिया में मغلوب हैं और काफिर गालिब हैं। तो अब हम जहां भी रहते हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ रहते हैं ना, तो हम मغلوب बन करके रहते हैं। हत्ता के बदकिस्मती यहाँ तक आ गई है, या हमारे आमाल की जो शामत है, शामत आमाल, उसने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है कि मुसलमान मेजॉरिटी मुल्कों में भी रहते हैं, फिर भी जो साथ करने वाला काम करने वाला हिंदू होता है ना, वो हमारे ऊपर गालिब होता है। हालांकि मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं सारे, यानी 90% लोग मुसलमान है, 95% लोग मुसलमान है, 95%, लेकिन वो जो हिंदू होगा ना वर्क प्लेस के ऊपर, वो हिंदू हमारे ऊपर चढ़ा होगा, है ना। ये अल्लाह की के अजाब की एक ऐसी शक्ल है जिसका हमें एहसास नहीं हो रहा कि ये अल्लाह का अजाब है। जैसे आजकल ये कोरोना, मौलवी लोग बोल बोल के थक गए कि अल्लाह का अजाब है, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, गुनाहों को छोड़ो, बेहय को तर्क करो, लेकिन बिल्कुल इस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया ना किसी का, जाता ही नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड करने की हद तक दीनदारों का जाता है, दीनदार लोग व्हाट्सएप के मैसेजेस फॉरवर्ड करने की हद तक तो तौबा की बातें करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में से गुनाहों को छोड़ना, टीवी को छोड़ना, बेपर्दगी को छोड़ना, और इस किस्म के जो गुनाह हैं उनको तर्क करना, तौबा करना, अल्लाह से माफी मांगना, किसने करी है? किसी को जानते हैं अपने जानने वालों में जिसको कोविड हुआ और उसने गुनाहों से तौबा कर लियो, या जिसके घराने में कोविड हुआ उसको उसने गुनाहों से तौबा कर लियो, जिंदगी बदल दी हो कि भाई ये अल्लाह का अजाब था, राइट? किसी एक फर्द को शायद आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, किसी एक फर्द को आप ऐसा नहीं पहचान सकेंगे कि जिसकी जिंदगी बदल गई हो अल्लाह के अजाब की शक्ल को देख करके, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये अल्लाह का अजाब ही है, क्योंकि जब अल्लाह का अजाब आ जाता है ना, तो फिर तौबा की भी तौफीक नहीं होती, तौबा की भी तौफीक नहीं होती। बिल्कुल इसी तरीके से जो हम मुसलमान मेजोरिटी मुल्कों में रह करके काफिरों से मغلوب होते हैं ना, ये अल्लाह का अजाब है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा अजाब है अल्लाह ताला का, ठीक है। तो हम मغلوب हैं, तो पहली बात ये कि पहले ऐसा नहीं था, इंडिया के अंदर आप रहते थे, ठीक है ना, लेकिन हुकूमत मुसलमानों की होती थी, बेशक उनकी मेजोरिटी होती थी, लेकिन गालिब मुसलमान होते थे, राइट? गलबा मुसलमान हुकूमत का होता था, अब ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है वो काफिरों के दरमियान नहीं भी रह रहे, फिर भी इस ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट की वजह से, ये द एडवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इसकी वजह से आप हर एक से कनेक्टेड हैं, है ना, जो वेबसाइट के जरिए से और ट्विटर और फेसबुक और हर चीज के जरिए से ना, आप गोया के एक वर्चुअल सोहबत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उस वर्चुअल सोहबत के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं, मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, दीनदार भी, बददीन भी, बदअकीदा भी, हर किस्म के लोग जो है वो मौजूद है और उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, ठीक है ना। तो इन हालात के अंदर जो है ना, ईमान की हिफाजत करना ये मुश्किल काम है ना। ठीक है जी, किसी को कोई सवाल है? अच्छा, तो शिर्क की नफरत की बात हो रही थी, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट लिख लें, देखें किताब के ऊपर लिख लिया करें, पहली बात तो किताब होना जरूरी है, आपके पास किताब ही नहीं है तो अल्लाह रहम करे, कुछ तो करें ना यार, कम से कम प्रिंट आउट निकाल लें इन पेजेस का जो कि हम पढ़ रहे हैं। हम यही 4-5 पेजेस जो हैं वो महीनों से पढ़ रहे हैं, तो 4-5 पेजेस का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते कहीं से जा करके, है अपने घर में अगर प्रिंटर नहीं है तो। कुछ तो तमन्ना होनी चाहिए ना, कुछ तो शौक होना चाहिए ना अल्लाह के कुरान का इल्म हासिल करने के लिए। अगर इतना ही बेइतनाई अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के कुरान के साथ बरतेंगे, तो फिर क्या तवक्को रखते हैं? अल्लाह ताला फिर आपको जो है वो लाड प्यार के साथ आपको रखेंगे, या जलील और रसवा करके रखेंगे? अल्लाह के कुरान को जलील और रसवा करके हमने अपने अपनी जिंदगी में रखा हुआ है, तो अल्लाह से क्या तवक्को करते हैं फिर? ठीक है, तो प्रिंट आउट्स कम अज कम रख लें, किताब मंगवा के रख लें, ठीक है ना, और किताब को पढ़ा करें, क्लास के अंदर सामने रखें, उसको फॉलो करें, और उसके ऊपर लिख करके नोट्स बनाएं, किताब आपके ऊपर लिखना ये किताब किताब की बेअदबी नहीं है, किताब की बेअदबी नहीं है किताब के ऊपर इल्म के नोट्स बनाना। हाँ, नक्शो नगार मत बनाएं, फजूल बातें उसके ऊपर मत लिखें, अपनी महबूबा के नाम मत लिखें उसके ऊपर, हैं वो बेअदबी होगी, ठीक है ना। लेकिन सजा बना करके रखना किताब को जो है ना, ये बेअदबी नहीं है। उससे इल्म ना हासिल करना, उसको इल्म के लिए इस्तेमाल ना करना, ये उसकी बेअदबी है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर स्टिकीज वगैरह भी चिपकाने की जरूरत नहीं है, स्टिकीज चिपकाएंगे कल को वो उड़ जाएंगी, उनकी जो ग्लू है वो खत्म हो जाएगा, इधर उधर हो जाएंगी, तो किताब के ऊपर लिखें, है ना। हमारे अकाबरीन किताब के ऊपर लिखा करते थे, इसको हाशिया लिखना कहते हैं, ठीक है ना। जो 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 चारों तरफ की जगह होती है ना, जो इबारत के चारों तरफ जगह खाली होती है, उसके ऊपर जो लिखते थे ना, उसको हाशिया लिखना कहते हैं। और वो इतना ज्यादा लिखते थे, इतना ज्यादा लिखते थे कि चारों तरफ की जगह बिल्कुल पुर हो जाती थी, कोई जगह फिर बाकी बचती नहीं थी किसी और के लिखने के लिए, ठीक है। तो ये नोट्स जो है ना, लिखा करें, टेक होम पॉइंट्स आपको बताया जा रहे हैं कि भाई शिर्क की नफरत, शिर्क क्यों बुरा है ये मालूम करना, ठीक है। आप लोगों को तो क्लास के बाद कुछ याद ही नहीं रहता कि क्लास के अंदर क्या बात हुई थी, क्या सवाल किया गया था, उसका किसी को फिक्र ही नहीं होती कि भी इसका जवाब भी देना चाहिए। या कोई चीज कही थी क्लास के अंदर की, जी याद दिलाइएगा क्लास के बाद कि जी आप लोगों को इस चीज का लिंक भेज दें, किसी को फिक्र ही नहीं है उसके बाद, है पता नहीं टीवी खोल के बैठ जाते हैं उसके बाद, या कोई चैट के ऊपर जो है अपने यारों दोस्तों के साथ लग जाते हैं, क्या शुरू हो जाता है फिर उसके बाद, है ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। तो शिर्क की नफरत, ठीक है। और दूसरी चीज, ये अपने गिरह से बांध लें कि आमाल बाद में खराब होते हैं, पहले अकीदे खराब होते हैं। शैतान पहले अकायद खराब करता है, ठीक है, पहले अमाल खराब नहीं करता। तो हमें अमाल की तो परवाह हो जाती है कि जी फलाना बंदा ये अमल कर रहा है, वो ये बुरा अमल कर रहा है, वो बुरा अमल कर रहा है, हमें इसकी परवाह नहीं होती कि हमारे अकीदे कैसे खराब हो रहे हैं, हमें अपने अकीदों की फिक्र नहीं होती, दूसरों के अमल की फिक्र पड़ी हुई होती है। हालांकि हमारा मसला ज्यादा खराब हुआ होता है कि हमारे अकीदे खराब हो रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद आठवीं और नवीं सिफत ये इस आयत से मुताल्लिक है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यक्तुलून। तो इसके बारे में भी तफसील से बात हो चुकी है कि अल्लाह ताला ने किसी भी जान को लेने की इजाजत नहीं दी है। अगर जान को लेने की इजाजत होती है तो वो सिर्फ उन कंडीशंस के तहत होती है जो कंडीशंस अल्लाह ताला ने बताई हैं हमें रसूलों के जरिए से, ठीक है ना। हत्ता के किसी बकरे को भी आप ऐसे नहीं मार सकते जब तक के हलाल जबीहा तरीके से उसको जबा ना करें, वरना वो आपके ऊपर हराम है, आपको नुकसान है, आप उससे फायदा नहीं उठा सकते, आपको सजा मिलती है। आपने बकरे को कैसे मार दिया, राइट, आपने गाय को कैसे जो है वो उस तरीके के खिलाफ किसी तरीके से मार दिया जिस तरीके की अल्लाह ने इजाजत दी थी, चलो अब तुम इस गाय को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हराम है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। अगर तुमने 10,000 रियाल की गाय खरीदी थी, राइट, या 70,000 रुपए की तुमने गाय खरीदी थी, तुम्हारे 70,000 रुपए जो है ना वो नाली में गए, ठीक है ना, अब आप उस गाय से फायदा नहीं उठा सकते, ये सजा है ना। क्यों सजा है? क्योंकि आपने किसी जान को उस वजह से उस तरीके से मारा जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी थी, ठीक है ना। तो मवेशियों के साथ ये मामला है, तो इंसानों के साथ क्या क्या मामला होगा? तो इंसानों की जान जो है वो तो यानी अशरफुल मखलूकात की जान होती है ना, एक को कत्ल कर देना ये सारी इंसानियत को कत्ल कर देने के मुतरादिफ है, जैसे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इसको डिस्क्राइब किया है। तो कत्ल का जो 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 गुना है ये बजाहिर हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हम सो कॉल्ड शरीफ घरानों के मम्मी है, मम्मी डैडी टाइप के लोग हैं ना, जो अच्छे अच्छे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ करके और फिर एक सो कॉल्ड रिवायती तौर पर दीनदार जिंदगी, शरीफ हमारी जिंदगी गुजारते हैं, तो कत्ल जो है ना वो हम समझते हैं ये तो दूसरे लोग करते हैं, ये तो गंदे लोग करते हैं, है ना, ये दूसरे किस्म के सियासतदान या जागीरदार और चौधरी और इस तरह के लोग कत्ल करते हैं, हम तो कोई कत्ल वत्ल नहीं करते, नहीं हम भी कत्ल करते हैं, ठीक है। तो हम कैसा कत्ल करते हैं कि पढ़े लिखे शरीफ घरानों के अंदर जो है ना वो पैदाइश से पहले औलादों को कत्ल किया जाता है, अबॉर्शन, राइट, अबॉर्शन को हम कत्ल नहीं समझते, हालांकि अबॉर्शन कत्ल है, ठीक है। उसके अंदर एक्सेप्शन क्या है कि 120 दिन का जब तक फीटस नहीं हुआ है, 120 दिन, जिसको 4 महीने कहते हैं, 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 4 महीने, ठीक है, 4 महीने से पहले रूह नहीं आती, उस वक्त अगर कोई ऐसी यानी वजह हो कि जिसपे शरीयत इजाजत देती है अबोर्ट करवाने की, तो उस वक्त अबोर्ट करवाया जा सकता है, ठीक है ना, शरी इजाजत के तहत, ठीक है ना, जैसे माँ की जान को जो है वो कंफर्म खतरा है कि जी माँ की जान नहीं बचेगी अगर अगर ये बच्चा जो है वो पैदा हुआ, ठीक है ना, उसकी पैदाइश के लेकिन ये कब है, 120 दिन होने से पहले, 120 दिन होने के बाद फिर कोई एक्सक्यूज भी नहीं रहता, कोई फिर उसके बाद इजाजत नहीं रहती, किसी भी एक्सक्यूज के तहत आप अबोर्ट नहीं कर सकते, आप वजह हमल नहीं कर सकते, अगर करेंगे कत्ल का गुनाह होगा, ठीक है। तो ये तो पढ़े लिखे शरीफ लोग जो सो कॉल्ड जो मुआशरे के अंदर मशहूर होते हैं, तो है इस तरह का, नहीं नहीं मालूम होती ये बातें, या ये कि मालूम करना ही नहीं चाहते ये बातें, तो इस वजह से कत्ल करते हैं अपनी औलादों का, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कत्ल की शक्ल। अब कत्ल के बाद जो दूसरा गुनाह, यानी जो अमली गुनाह दूसरा, वो क्या है, जिना, ठीक है। तो जिना का भी कभी गुनाह, जो सो कॉल्ड शरीफ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमने तो, हम तो जिना नहीं करते, जिना तो दूसरे लोग करते हैं, और बहुत ही गंदे किस्म के, या फिल्म एक्टर और टीवी एक्टर टाइप के लोग हैं वो जिना करते हैं, या जो है वो और किस्म के लुच्चे लुफंगे किस्म के लोग जिना करते हैं। नहीं, शरीफों के घरों में भी जिना होता है, शरीफों के घरों में भी, ठीक है ना, हत्ता के दीनदारों के घरों में भी जिना हो जाता है, सही है। उसकी वजह क्या बनती है कि बाकी दीन के ऊपर तो अमल कर रहे होते हैं, पर्दे के ऊपर अमल नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेपर्दगी की वजह से क्या होता है, अल्लाह ताला सजा देते हैं दीनदारों को, खुसूसन, पिछली दफा बात हो चुकी है इसके ऊपर कि दीनदारों को खुसूसन सजा मिलती है कि अल्लाह ताला ना फिर नामहरम रिश्तों के दरमियान अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर वो बात आगे बढ़ जाती है और जिना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेपर्दगी का जो हराम हमारे घरों में मुर्तकिब हो रहा होता है, इसकी वजह से ना अल्लाह ताला की सजा होती है कि जिना तक बात पहुंच जाती है, ठीक है ना। दूसरी वजह जो शरीफ घरानों के अंदर जिना तक बात पहुंचाती है, वो ये कि मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं है, राइट, शौहर बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, या बीवी शौहर के हुकूक पूरे नहीं कर रही। अब ये हुकूक पूरे करने में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिनमें उसकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको मीट करना, ये भी जौजैन की जिम्मेदारी होती है, राइट, ये हुकूक होते हैं, शौहर का हक है कि बीवी उसके सेक्सुअल डिजायर को पूरा करे, ठीक है। लेकिन हमारे घरानों के अंदर इस चीज को समझा ही नहीं जाता कि ये भी कोई चीज होती है भाई, हत्ता के दीनदार घरानों के अंदर ये चीज जो है वो दीन से खारिज कर दी गई है, ठीक है ना, कि भी शौहर के भी कुछ हुकूक होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो बी बेगम साहिबा के नाज और नखरे इतने ज्यादा होते हैं कि वो शौहर को दूर रखती हैं अपने से, राइट ना, कोई ना कोई बहाना, मेरी तबीयत खराब है, मेरी ये है, या ये कि चढ़ जाती हैं उल्टा शौहर के ऊपर, ठीक है ना। तो अब शौहर को नहीं होती, फिर कहाँ से बीवी के साथ फिर अपनी ये पूरी करेगा, तो फिर वो पहले तो गंदी तस्वीरें और फिल्मों के जरिए, अच्छा ये शरीफ शौहरों की बात कर रहा हूँ, लुच्चे लुफंग के शौहर जो है ना, जो कि बीवी भी पूरी कर रही है और फिर भी वो हराम की तरफ देख रहे हैं, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ तो उनकी बात हो रही है कि जो अपनी एक बीवी से जो है ना वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और इधर उधर नहीं देखना चाहते, ये उनकी बात हो रही है कि वहां पर भी ना तभी तकाजे इतने ज्यादा अनमेट हो जाते हैं कि फिर वो जिना के मुर्तकिब हो जाते हैं। पहले निगाहों का जिना, वहां से बात शुरू होती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जुबान के जिना पे बात आती है, क्योंकि नामहरम से शहवानी गुफ्तगू ये जुबान का जिना है, ठीक है। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जो इंसान के जिंसी आज़ा होते हैं फिर वो उसकी तकमील कर देते हैं, ये जो हाथ के गुना और जुबान के गुना और आंखों के गुना और कान के गुना, इनकी तकमील कैसे होती है, शर्मगाह के गुना से तकमील हो जाती है इसकी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना वो शरीफ घराने वहां पे मर्द जिना के मुर्तकिब हो जाते हैं, और उसी तरीके से औरतें जिना की मुर्तकिब होती, क्योंकि मर्द को अपनी औरत के इस बारे तकाजे की फिक्र नहीं होती है, सही है। तो वो तकाजे कब तक, कब तक भाई? औरत के अंदर कम होते हैं ये, मर्द के मुकाबले में बहुत कम होते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक लिमिट होती है, औरत की भी वो लिमिट रीच हो जाती है। तो अगर उसका भी ख्याल नहीं करेंगे ना, तो उसको भी कोई ना कोई हमदर्द मिल जाए, है ना, जहां पे वो अपने पहले तो बातचीत करके वो अपने दिल को हल्का करेगी। अगर शौहर को, शौहर के अंदर बीवी से बातचीत ही नहीं है, बीवी के जो है वो दिल का हाल पूछना, उसके साथ जो है वो शरीक होना, उसको तो जो गुलाम के बांदी के जरिए से के तरीके पे जो है ना वो अपने माँ के हवाले कर दिया होता है, बांदी के तरीके के, जैसे कि बांदी लेकर के आए खरीद करके बाजार से, है ना, उसको जो है वो अपने बहनों के हवाले कर दिया। तुम्हारा तो जिम्मेदारी है, तुमने तो पूरे घर का निजाम चलाना है, तुम निजाम क्या चलाना है, तुमने पूरे घर की खिदमत करनी है, निजाम को थोड़ी चलाना होता है उसने, वो तो वहां की खादमा होती है, बांदी होती है वो तो पूरे घर की। तो इस काम के लिए बीवी को लेकर के आते हैं और इसके अंदर समझते हैं कि हमें उनको बड़ी जन्नत मिल जाएगी, अम्मा हुजूर खुश हो जाएंगी, इनको जन्नत मिल जाएगी। लानत है ऐसे ऐसी समझ के ऊपर, कोई नहीं जन्नत मिलती इस तरीके से, जुल्म के मुर्तकिब होने के ऊपर जहन्नम तो पक्की मिलेगी, जन्नत कोई नहीं मिलेगी। तो ये होती है बीवी का रोल। तो बीवी के जो तकाजे हैं वो तो पूरे नहीं हो रहे होते, तो बीवी कब तक बर्दाश्त करेगी? तो इस तरीके से ना वो ऊपर से तो बड़ा शरीफ घराना है और बड़ा जो है वो है, लेकिन वहां पर इस तरीके से भी जिना हो जाता, ठीक है। और आजकल तो यानी ऐसे हालात, आजकल से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि 2021 में बुरे हालात शुरू हो गए, नहीं, बहुत पहले से बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, बयान नहीं किए जा सकते क्या क्या कुछ नहीं हो रहा है घरों के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना उनसे, इन हालात से अपने आप को बचाने के लिए, इनको अवॉइड करने के लिए करना पड़ता है कुछ, अपने नाज नखरे कम करने पड़ते हैं, कुछ अपनी है ना अपने शौक जो हमारे लगे हुए हैं ना, उन शौकों को जो है ना जरा दबाना पड़ता है, तब जाकर के इन मुसीबतों से इंसान बचता है, ठीक है ना। उसी तरीके से शरीफ घरानों के अंदर औलादों का जिना, क्योंकि औलादों को ये जो शरीफ शुरफा होते हैं, वो शुरफा जो है ना वो अपने शौक की तस्कीन में कि जी मेरी बेटियां जो है ना वो तो यूनिवर्सिटी जाएंगी और उनमें डिग्री आनी चाहिए, वो तो बड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। औरतों की तालीम कहाँ से आई है? ये औरतों की तालीम किधर से लेकर के आए आप? ये वाली औरतों की तालीम है अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, उल्टे सीधे किस्म के नजरियात है ना, जिसकी वजह से पूरे जहान के अंदर फसाद फैलाया हुआ है। तो वो भेज देते हैं, फिर उसके बाद अब वो कॉलेज जा रही है और वहां पर जो है लड़कों के साथ और यानी फोहश किस्म की लड़कियों के साथ उसकी दोस्तियां बन रही हैं, जो कि किस किस्म की वो जिंदगी गुजारते हैं ये लोग। तो ये शरीफ घराने की जो लड़की है वो वहां पे जाकर के इन लोगों के साथ जो उठना बैठना पड़ता है उसको पढ़ती है, जाहिर है उनके साथ पढ़ना है, उनके साथ प्रोजेक्ट करना है, उनके साथ असाइनमेंट्स बनाने, उनके साथ जो है वो ग्रुप स्टडियंग करनी है। तो क्या शैतान जो है वो मुराकबे में चला जाता है उसके बाद कि शरीफ घराने की लड़की आई है जी कॉलेज में, तो अब मैं जो हूं ना मैं तो जरा दूर भाग जाऊं इधर से, है? नहीं, तो शैतान को फिर बहुत बेहतरीन मौका मिलता है, बहुत बेहतरीन उसको मौका मिलता है, और फिर वो उस लड़की की ताक में लग करके जो है ना फिर उसके साथ जो है वो काम करवाता है, पूरे पूरे काम करवाता है, ठीक है। तो ये सब जो है ना ये शरीफों के यहाँ इस तरह से जिना होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ जो है ना ये फिल्म और टीवी एक्टरों के मामलात नहीं है, और ये जो है ना वो लुच्चे लुफंगे किस्म के लोगों के मामलात नहीं है, ये हमारे जैसे जो सफेद पोश कहलाते हैं ना उनके घरों के अंदर ये सारे ड्रामे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना ये अल्लाह ताला को के साथ जो हमारा सलूक है ना कि हमने दीनदार भी बनना है लेकिन साथ साथ जो है वो अपने तमन्नाओं को भी, जो हराम तमन्नाएं हमारी हमें उनको भी पूरा करना है, अल्लाह ताला सबसे बड़े गैरतमंद हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की गैरत से नहीं खेलना चाहिए वरना फिर बहुत बड़ी सजा मिलती है, दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई मिलती है, ठीक है जी। आगे चलें, तो अब जो है जब गुनाह हो गया, पिछली जिंदगी में ये गलतियां हमने कर ली हैं, ठीक है ना, तो अब हमारे आगे रास्ते बंद नहीं हुए, तौबा का रास्ता खुला हुआ है हमारे सामने, ठीक है। तो उस तौबा के रास्ते के बारे में अब अल्लाह ताला का जो बयान है उस पर तफसीर फरमाते हैं कि आगे उस अजाब का बयान है, यानी तो इसमें भी तौबा का जिक्र भी आ जाएगा कि आगे उस अजाब का बयान है जो जराय में मस्कूरा के करने वालों पर होगा। और आयात के सियाक व सबाक से ये बात मुतय्यन है कि ये अजाब कुफार के लिए मखसूस है, ठीक है। यहाँ पर कुफार की बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जो है वो कतर और जना का जुर्म करेगा और कुछ नहीं होगा उसके साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुफार की बात हो रही थी, तो ये अजाब मैंने तो आपको इन जनरल कत्ल और जना के मुतालिक अहवाल बताया ना, वो इस आयत के तहत खाली नहीं बताए बल्कि इस लफ्ज के आने की वजह से बताए, ठीक है। तो ये अजाब कुफार के लिए मखसूस है जिन्होंने शिर्क व कुफर भी किया और इसके साथ कत्ल व जना में भी मुबतला हुए, क्योंकि अव्वल तो युवाफ लहुल अजाब के अल्फाज मुसलमान गुनाहगारों के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि उनके एक गुनाह पर एक ही सजा का वादा कुरान और सुन्नत में मंसूस है, ठीक है ना, कि मुसलमान जब गुनाह करता है जो चूंकि वो ईमान वाला होता है, यानी उसका अकीदा महफूज है अभी, ठीक है ना, तो उसके अकीदे की हिफाजत की वजह से उसको एक गुनाह का यानी एक अमली गुनाह का एक ही सजा मिलती है उसकी, ठीक है। सजा में तदाउफ, तदाउफ का मतलब है कैफियत या कमियत में ज्यादती मोमिनीन के लिए नहीं होगी। ये कुफार की खसूसियत है कि कुफर पर जो अजाब होना था अगर कुफर के साथ और गुनाह भी किए तो अजाब दोहरा हो जाएगा, ठीक है। यानी एक तो कुफर की वजह से जहन्नुम में दाखिल होंगे और फिर उसके बाद जो उन्होंने गुनाह किए होंगे तो हर हर गुनाह के ऊपर उनको अजाब दिया जाएगा और वो अजाब जो है वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये कुफार की खसूसियत है कि कुफर पर जो अजाब होना था अगर कुफर के साथ और गुनाह भी किए तो अजाब दोहरा हो जाएगा। दूसरे इस अजाब में ये भी मजकूर है वह यखलुद फी ही मुहान, यानी हमेशा हमेशा रहेगा इस अजाब में जलील व ख्वार होकर इहानत के साथ। मुहानन का मतलब इहानत, जिल्लत। कोई मोमिन हमेशा हमेशा अजाब में नहीं रहेगा कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जहन्नम से निकाल लिया जाएगा, ठीक है ना। ये है वो हकीकत जो कि अल्लाह के नबी ने बताई, ठीक है ना। लेकिन शैतान क्या बताता है, शैतान ये बताता है इतने नाइस लोग हैं इनको तो अजाब नहीं होना चाहिए, और जो मुसलमान तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं तुम्हारे खानदान में बैठे हैं तो वो तो इतने बुरे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं कि उनको तो जहन्नुम में जाना चाहिए और हमेशा हमेशा के जहन्नुम में रहना चाहिए। लेकिन वो शैतान की बताई हुई हकीकत है जो कि हकीकत नहीं है, झूठ है, शैतान का बनाया हुआ, ठीक है। तो कितने ही आपके रिश्तेदार जो मुसलमान हैं वो आपके ऊपर जुल्म करते हो, आपके साथ अच्छे सलूक ना करते हो, बेशक आप अपना तो गुनाह किसी को याद नहीं आता, अपने गुनाह नजर ही नहीं आते कि आपने उनके साथ क्या किया था। हाँ, वो मेरे साथ ये भी करते हैं, यो भी करते हैं, वो मुझे ऐसा करते हैं, वो मुझे वैसा करते हैं, है ना। ये राग तो हर एक को अपना आता है ना, ठीक है ना। अपना अपना पार्ट तो बयान तो करना दूसरी बात, अपना बात अपना पार्ट तो नजर ही नहीं आ रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चाहे वो जो भी करें, बहरहाल अगर वो ईमान पर हैं और उनका खात्मा ईमान पर होगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं रहेंगे, चाहे आप कितना ही चाहें कि वो हमेशा जहन्नुम में रहे, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये जहन्नुम आपके बाप की मीरास नहीं है कि आप जिसको चाहें वो लौट करते फिरें, ठीक है ना। ये जहन्नुम जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, अल्लाह ताला के बने हुए उसूल वहां पे चलते हैं, हमारे आपके बनाए हुए उसूल वहां पे नहीं चलते, ठीक है। तो फरमाया कि वो हमेशा हमेशा अजाब में नहीं रहेगा कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, अपने गुनाहों की सजा भुगतने के बाद जहन्नुम से निकाल लिया जाएगा। खुलासा यह है कि जो लोग शिर्क व कुफर में भी मुबतला हुए और कत्ल व ज़िना में भी, उनका अजाब मुदाफ यानी दोहरा शदीद भी होगा और फिर ये अजाब दायमी भी रहेगा, ठीक है जी। तो जो कुफर पे मरता है ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसको जो जहन्नुम में इस किस्म का अजाब देते हैं ना, तो अल्लाह ताला को ठीक पता है कि उसने क्या किया है, ठीक है ना। जैसे कि आजकल क्या तमाशे चल रहे हैं, ये इंडिया में जो जो हिंदू और गैर मुस्लिम एक्टर्स मर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो इंडिया में तो क्या पाकिस्तान के अंदर सोग मनाया जा रहा है उसके ऊपर, इतना अच्छा था और इतना वो था और इतना ऐसे, एज इफ के जी इन लोगों के बस ना चले कि उसको जो है वो जन्नत का टिकट दे दिया जाए, है ना। पता नहीं कौन कौन सा सिंह मर गया, तो कौन मर गया, तो कौन मर गया है, कभी कोई दत्त मर जाता है तो कोई, तो भाई वो अब अगर कुफर पर उनका इंतकाल हुआ है, मरे हैं कुफर के ऊपर, तो अब उनके साथ हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप अपना अपनी जन्नत दाव पे लगा रहे हैं इस तरीके से, राइट। मरने वाले काफिर के साथ जो आप अपना यानी आंसू बहा रहे हैं ना, ठीक है ना, ये आप अपनी जन्नत दाव पे लगा रहे हैं, अपना ईमान दाव पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको इसकी परवाही कोई नहीं होती है, ठीक है ना, उनको फिक्र ही कोई नहीं है, उनका उनके नज़दीक तो वैसे भी एक यूनिवर्सल दीन ही होना चाहिए बस, है ना। ये कोई इस्लाम और हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये सब कुछ तो होना ही नहीं चाहिए, इनमें से अक्सर तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो खुद जो है ना आप लोग किसी दर्जे में भी इस किस्म की डिस्कशन में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, हत्ता के इसकी मुखालफत में भी अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, इवन इसकी मुखालफत में भी, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं ना आपकी मुखालफत करने से सिर्फ आपका वक्त जाया हो रहा है और कोई फायदा नहीं होगा उन लोगों को इस, ठीक है ना। इन इश्यूज के ऊपर बहस करने से ना ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना, इसके लिए बैकग्राउंड वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब कोई मर गया उसके ऊपर उसने जो है वो उसके हिमायत में बोलना शुरू कर दिया, इधर से जो है उन्होंने मुखालफत में बोलना शुरू कर दिया, और समझ रहे हैं कि ये बड़ा जिहाद कर रहे हैं, ठीक है, ये बेवकूफ़ी है खाली, ये वक्त का ज़ाया है, ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे आपको नुकसान ज्यादा होगा, एक वक्त की ज्यादती का ज़ाया होना। दूसरा ये कि इस किस्म की बहस में पढ़ करके ना वो आगे से ऐसी दलील, ऐसा कोई कोई पॉइंट लेकर के आएंगे जिसका आपके पास जवाब ही नहीं होगा, तो आप के खुद आपके अपने अंदर शकूक पैदा होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आपका अपना ईमान जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये रिप का मतलब क्या होता है जरा बताएं तो सही, मैं भी सोचता हूँ कि यार ये RIP क्यों लिखते हैं। रेस्ट इन पीस, ओ हाँ नहीं, मेरे भी जहन में आ गया, हाँ बस वो तो रेस्ट इन पीस का आपको कुछ कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, आपका अपना रेस्ट इन पीस जो है ना वो खराब हो चुका है अगर इस तरीके से कहते हैं, ठीक है। तो भाई इस बहस में ना पड़ा करें, इन लड़कों के साथ इन दीवानों के साथ बहस करना आपके अपने लिए, आपके अपने ईमान के लिए खराब है, ठीक है। ये मर गए ना एक दफा तो दूसरी लेकर के नहीं आएंगे फिर, ये कोई बीवी नहीं है कि एक को तलाक दे दी तो दूसरी मिल जाएगी, राइट, ये जिंदगी है, ये एक ही है, ये कोई शख्स जो है ना वो दूसरी जिंदगी से निकाह करके नहीं ला सकता, ठीक है। अच्छा ठीक है, दीवाने मजनू होते हैं, भाई वो मजनू होते हैं, हम अगर उनके साथ इन्वॉल्व हो अगर होंगे ना तो हम भी मजनू बन जाएंगे, तो इस वजह से अपने आप को अलग रखना है। तो फरमाते हैं कि खुलासा ये है कि जो लोग शिर्क व कुफर में भी मुबतला हुए और कत्ल व जिना में भी, अच्छा एक बात याद रखें कि आप जो है ना वो टीचर नहीं है, ठीक है ना, तो आप उनको मजनू नहीं कह सकते, ये आजिज चूंकि आपको सिखा रहा है, समझा रहा है बातें, तो ये आजिज जो है ना वो उनको सिर्फ पर्सपेक्टिव प्रॉपर रखने के लिए उनको इस तरह की बातें कह रहा है, ठीक है ना। ये टीचर की डेस्क पे या टीचर की चेयर पे बैठ करके ये चीज जायज हो जाती है क्योंकि उसमें नियत मुख्तलिफ होती है, स्टूडेंट ये बातें नहीं कर सकते। आप अगर इस तरह की बातें करेंगे ना तो ये भी आप शैतान के जाल में फंस रहे होंगे, ठीक है ना, ये आपके दिल में ना फिर वो एक डिफरेंट किस्म की जज्बात पैदा करने का वो सबब बनाएगा जिसके जरिए से फिर आपको गिराना शुरू करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट के लिए बातें जायज नहीं होती हैं इस तरह की बातें करना, कि दूसरों के बारे में जो है ना मजनून दीवाने इस तरह की बातें करते रहे, ठीक है ना। अपने लिए सोचेंगे हाँ वाकई मैं अगर इन्वॉल्व हो गया तो मैं मजनू बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, इस तरह की बातें अपने लिए, अपनी इसलाह के लिए सोचना, ये ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो है ना जो जो लिसनिंग पोजिशन में होते हैं ना उनको इस तरह की बातें दूसरों के बारे में बोलने की इजाजत नहीं होती है, ठीक है। चले आगे चले कि खुलासा ये है कि जो लोग शिर्क व कुफर में भी मुबतला हुए اور قتل و زنا میں بھی ان کا عذاب مضاعف یعنی دوہرا. سخت مجرم جن کا عذاب یہاں مذکور ہوا ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ ٹیچر کے سامنے رہتا ہے ہر وقت. ٹھیک ہے, جو ٹیچر ہوتے ہیں نا وہ جب کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے وہ صرف اسٹوڈنٹس کے سوچ کی اصلاح کرنے کے لیے ایسا کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ اس کے دل میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ مجھ سے کہیں آگے نکل جائیں گے, اگر یہ توبہ کر لیں گے تو میرے گناہ جو ہے نا یہ تو اتنے برے ہیں کہ میں تو کہیں کا نہیں ہوں, اور یہ لوگ تو کہاں سے کہاں. حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ جیسے ان کے ملفوظات کے اندر منقول ہے نا, ایسی فکر ہوتی ہے ہر استاد کے اور ہر شیخ کے دل کے اندر کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی بدتر سمجھتا ہے. حتیٰ کہ حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں تو ایک خسیس خارش زدہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہوں, کافر سے بھی زیادہ بدتر ہوں, فرنگی سے بھی زیادہ بدتر ہوں. رائٹ, اور کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ جو لکھ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں ساری باتیں؟ نہیں, یہ تو سچے لوگ تھے نا, جبھی تو مجدد بنے تھے, تو حقیقت میں ان کی دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یہ بالکل دو الگ الگ پوزیشنز ہیں. اس پوزیشن کے لیے یہ باتیں کرنا جائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسری پوزیشن اسٹوڈنٹ پوزیشن وہاں پر یہ باتیں کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد یعنی کافروں کی توبہ کے بعد ان کے اعمال نامے میں حسنات ہی حسنات رہ جائیں گی, جو انہوں نے کری ہوں گی نا اپنے کفر کے وقت میں, جو حسنات کری ہوں گی صرف وہ رہ جائیں گی, کیونکہ شرک و کفر سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ بحالت شرک و کفر جتنے گناہ کیے ہوں اسلام و ایمان قبول کر لینے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے پچھلے زمانے میں جو ان کا نامہ اعمال سیئات اور معاصی ہی سے لبریز تھا اب ایمان لانے سے وہ تو سب معاف ہو گئے, آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اس کے بعد کے اعمال صالحہ نے لے لی ہے. ٹھیک ہے نا, سارے گناہ ان کے زیرو ہو گئے. چاہے 100 بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے آئے ہوں, 100 بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, ایک بیٹی کو زندہ درگور کرنا جو ہے وہ ایک ایسا ناقابل معافی جرم نظر آتا ہے, رائٹ, لیکن ایمان لانے کے بعد وہ گناہ زیرو. تو سیئات کو پھر حسنات میں تبدیل کرنے کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر, مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کلیئر ہونا چاہیے سادہ سے الفاظ سے. ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ, ویسے کہتے ہیں کیونکہ صحابہ میں اسے تو نہیں تھے, یہاں شاید ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے, بہرحال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے جتنے گناہ زمانے کفر و جاہلیت میں کیے تھے ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کے بجائے نیکیاں لکھ دی جائیں گی, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب کبھی ان لوگوں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آئیں گے تو ان پر نادم ہوں گے اور توبہ کی تجدید کریں گے, یعنی اپنے ایمان کی تجدید کریں گے, کیونکہ ایمان لانا جو ہے یہ کفر سے توبہ ہوتا ہے, اسی کو تو کفر سے توبہ کہتے ہیں. تو ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اس کی دلیل میں بعض روایات حدیث بھی پیش فرمائیں. ٹھیک ہے, تو کافر جو ہے نا وہ اس طریقے سے فاسٹ فارورڈ آگے بڑھ سکتا ہے پیدائشی مسلمانوں کے مقابلے, ٹھیک ہے نا, یا پرانے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک نیا مسلمان جو ہے نا وہ ایسے جو ہے نا وہ یعنی سپر سونک سپیڈ میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس دل کے اندر وہ نادم شرمندہ اللہ تعالیٰ سے معافی, اے اللہ میں نے کیا کیا, میں نے کیا اپنی زندگی برباد کر دی کفر کے اندر گناہوں کے اندر, رائٹ. تو یہی جو کانسیپٹ ہے نا پھر یہ ایون مسلمانوں کے لیے بھی پھر یہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ مسلمان بھی جو ہے نا اگر گناہ کی اور بہت زیادہ یعنی ایسی زندگی گزار رہا تھا پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے और जिंदगी बिल्कुल तब्दील कर देता है ना, और फिर वो अपने इस नेकी वाली जिंदगी में वो पुराने गुनाहों को याद कर कर के रोता है, अल्लाह ताला से और माफी मांगता है और रुजू करता है ना, तो इस मुसलमान की भी जो पिछली जिंदगी के गुनाह थे उनको भी नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। इसके ऊपर याद आया कि भाई जुनेद जमशेद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक दफा किसी बयान में ये बात करी थी कि मैंने एक दफा मौलाना तारिक जमील साहब से कहा कि मौलाना साहब, अगर अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया ना, तो मैं तो आपसे बहुत आगे निकल जाऊंगा, मैं तो आपसे नेकियों में बहुत आगे निकल जाऊंगा। तो मौलाना साहब वैसे तो ये नहीं कि जी नहीं मेरी नेकियां तुमसे ज्यादा है, तुम कैसे आगे निकल जाओगे, तो उन्होंने बस समझने के लिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं ना, तो उन्होंने पूछा कि भाई वो कैसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना साहब, मैंने अपनी गुनाह वाली जिंदगी में इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल करके उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया ना, तो फिर तो आपके पास तो उतने गुनाह है ही नहीं, आपने तो गुनाह किए ही नहीं ऐसे, है ना, तो मैं आपसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। और वाकई हकीकत है, क्योंकि जुनैद जमशेद साहब जो थे वो जो गुनाह करते थे वो गुनाह जो है वो कोई उनका इनफरादी गुनाह तो नहीं था, वो गुनाह तो इज्तिमाई गुनाह था, पूरी दुनिया के लेवल के ऊपर लोगों को मौसीकी पे डालना और मौसीकी और नाच गाना और ये सारी चीजें, राइट, उनको देख करके कितने लोग जो है वो मौसीकी के रास्ते के ऊपर इंस्पायर हुए, राइट, और क्या क्या कुछ नहीं लोगों, यानी जो देखता था बदनजरी का मुर्तकिब होता था, और तो वाकई गुनाह तो ऐसे लोगों के फिर हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितने उनके गुनाह होते होंगे, लेकिन अगर वाकई अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा के उनको गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दें, तो फिर तो भाई वाकई वो बड़े बड़े उलमा और मशाइख से आगे बढ़ जाएंगे, मतलब मशाइख से तो क्या बढ़ेंगे, उलमा से भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उलमा की नेकियां भी जो होती है ना वो भी ऐसे ही होती हैं, क्योंकि उलमा का कोई इनफरादी काम नहीं होता, इनका भी पढ़ने पढ़ाने का सीखने सिखाने का काम होता है, मशाइख का भी यही काम होता है, तो वो भी जो है ना फिर जिस तरह से एक शोबिस का बंदा मुरक्कब गुनाह कर रहा होता है, उसी तरीके से उलमा और मशाइख मुरक्कब नेकियां कर रहे होते हैं, कॉम्पाउंड नेकियां यानी एक्सपोनेंशियल नेकियां कर रहे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो दूसरों को नेकियों के लिए तैयार कर रहे होते हैं, दूसरों को पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तौबा के ऊपर आमादा कर रहे होते हैं, तो उनकी नेकियां भी ऐसी मुरक्कब होती हैं, ठीक है ना ये। लेकिन अलबत्ता ये भी है कि जितना मीडिया कवरेज जो है वो इन गुनाहगारों को मिलती है, उतनी मीडिया कवरेज तो नेकों को तो नहीं मिलती बहरहाल, ठीक है। एनीवेज तो ये एक अलग बहस। अच्छा जी, कोई कोई सवाल, कोई कमेंट वगैरह? अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने तौबा का फिर जिक्र फरमाया अगली आयत के अंदर, वमन ताबा वअमिला सालिहन, ठीक है, और जिसने तौबा करी और नेक आमाल किए, फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबन, बस उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ पलटने का बेहतरीन मुकाम है, ठीक है ना, मताबन तौबा करने की जगह, पलटने की जगह, ठीक है। तो ये तो शायद हम खुलासे तफसीर से इसका तर्जुमा तो पढ़ चुके थे ना मेरे ख्याल में, तो खैर यहाँ से अभी हम मारूफ मसाइल पढ़ रहे हैं कि बज़ाहिर ये उसी मजमून का तकरार है जो इससे पहले आयत में आया था, इल्ला मन ताबा व आमना व अमला अमलन सालिहन, है ना, वही मजमून चल रहा था ना, तो ये गोया के तकरार ही रिपिटिशन है, और रिपिटिशन जो है ना ये बगैर किसी वजह के अगर रिपिटिशन हो तो वो अच्छी चीज नहीं होती, कलाम की खूबसूरती उस रिपिटिशन की वजह से खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से कुरान के अंदर जब कभी भी रिपिटिशन आता है ना, तो उलमा मुफस्सिरीन उसके ऊपर फिर डिस्कशन करते हैं कि भाई इस रिपिटेशन लाने की वजह क्या थी, ठीक है ना, तो देयर हैज टू बी अ गुड रीजन बिहाइंड इट, जो कि फिर मुफस्सिरीन उसके ऊपर यानी बात करके फिर हमें आगाह करते हैं कि अच्छा ये वजह थी रिपिटेशन की। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं कि रिपिटेशन आई है तो इसे क्या वजह है, क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है ये तो नुक्स से पाक है, ठीक है, तो किसी रीजन ही की वजह से आई होगी ना। तो फरमाया कि कुर्तुबी ने कफ्फाल से ये नकल किया है कि ये तौबा पहली तौबा से मुख्तलिफ और अलग है, क्योंकि पहला मामला कुफार और मुशरिकीन का था, यानी पहले जो तौबा का जिक्र था वो कुफार की तौबा का जिक्र था जो कत्लो जिना में भी मुबतला हुए थे अपने कुफर के अलावा, फिर वो ईमान ले आए तो उनकी सैयात हसनात से बदल दी गई, जिसकी दो सूरतें ऊपर हम पढ़ चुके हैं अभी ना, ठीक है। और यहाँ यानी इस आयत के अंदर मुसलमान गुनाहगारों की तौबा का जिक्र है। इसीलिए पहली तौबा के साथ वह आमना यानी उसके ईमान लाने का जिक्र भी था। ठीक है ना, ये क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है ना इन दोनों आयतों में। आमना का लफ्ज जो है वो बाद में नहीं है, पहली वाली में आमना का भी लफ्ज था, यानी वो ईमान लाया। ठीक है ना, तो भाई वो पहले काफिर था, जब भी तो वो ईमान लेकर के आया। इस दूसरी तौबा में वो मजकूर नहीं, जिससे मालूम होता है कि ये तौबा उन लोगों की जिक्र की गई है जो पहले से मोमिन थे मगर गफलत से, यानी अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के ध्यान से गफलत की वजह से कत्लो जिना में मुब्तला हो गए। ठीक है, गफलत का मतलब क्या होता है? अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के ध्यान से कि अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी ये मेरे लिए जायज नहीं है, जेबा नहीं है, ये बातें भूल जाते हैं हम लोग, इसी को गफलत कहते हैं। ठीक है, तो वो कत्लो जिना में मुब्तला हो गए थे और किसी और गुनाह में, सारे गुनाह फिर इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई कि ऐसे लोग अगर तौबा कर लेने के बाद सिर्फ जुबानी तौबा पर इक्तफा ना करें बल्कि आइंदा के लिए अपने अमल को भी सालेह और दुरुस्त बना लें, क्योंकि क्योंकि अमेरा सालेहन का भी अल्लाह ताला ने आगे जिक्र किया है ना, सिर्फ वमन ताबा फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, सिर्फ ये तो नहीं फरमाया। ठीक है, तो उनका तौबा करना सही और दुरुस्त समझा जाएगा। ठीक है, इसीलिए बतौर शर्त के तौबा कर लेने के इब्तदाई हाल जिक्र करने के बाद उसकी जजा में फिर यतूबू का जिक्र करना सही हो गया, क्योंकि शर्त में जिस तौबा का जिक्र है वो सिर्फ जुबानी तौबा है और जजा में जिस तौबा का जिक्र है वो अमल सालेह पर मुरत्तब है। मतलब ये हो गया कि जिसने तौबा कर ली फिर अपने अमल से भी उस तौबा का सबूत दिया तो वो सही तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला समझा जाएगा, बखिलाफ उसके जिसने पिछले गुनाह से तौबा तो की मगर आइंदा अमल में उसका कोई सबूत ना फराहम किया तो उसकी तौबा गोया तौबा ही नहीं। खुलासा मजमून इस आयत के ये हो गया कि जो मुसलमान गफलत से गुनाह में मुब्तला हो गया फिर तौबा कर ली और इस तौबा के बाद अपने अमल की भी ऐसी इस्लाह कर ली कि उसके अमल से तौबा का सबूत मिलने लगा तो ये तौबा भी इंदल्लाह मकबूल होगी और बज़ाहिर इसका फायदा भी वही होगा जो पहली आयत में बताया गया है कि उसके सय्यात को हसनात से बदल दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये जो दूसरी आयत है ना तौबा के मुतालिक, वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, तो इसमें ना ये जो मन का जो लफ्ज है ना मन, ठीक है, तो मन का तर्जुमा जो है वो तो होता है कि जो कोई, ठीक है, लेकिन इसमें जो मफहूम निकल रहा होता है ना वो होता है शर्तिया का, कंडीशनल, कि जो कोई भी तौबा करेगा। ठीक है, तो ये जो है ना इसके अंदर शर्त हो गई कि जिसने भी तौबा करी, वो मन ताबा, वो जिसने भी तौबा करी, ठीक है, वो अमेरा सालेहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि, तो अमेरा सालेहन के जो है ना वो ज्वाइन हो रहा है कि उसके लिए फिर अल्लाह ताला की तरफ पलटने का यानी बेहतरीन जगह है। ठीक है, तो यानी उसकी तौबा जो है ना फिर वो उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। ठीक है, कि उसने जो तौबा भी करी और फिर उसने अमल साले भी किया तो अब इसकी तौबा जो है उसको मकसूद तक पहुंचाएगी। मकसूद क्या है? कि अल्लाह की तरफ वो पहुंच जाएगा, वासिर हो जाएगा अल्लाह ताला से। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो अमल सालेहन से मुराद जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये इसने जो है वो बड़ी इबादतें करनी शुरू कर दी और इसने नफिल पढ़ने शुरू कर दिए और ये हज उम्रे करके आ गया, है ना, ये अमल सालेह है, सालेहा है। ठीक है, नहीं, बल्कि अमला सालेहन से मुराद जो है ना वो कोई ऐसा कदम उठाना है, कोई ऐसा कदम उठाना कि जो के ना ये बात प्रूव करे कि हाँ ही इज सिंसियर, ही इज सिंसियर एंड सीरियस अबाउट हिज तौबा. सिंसियर एंड सीरियस अबाउट हिज तौबा. कोई ऐसा अमल, ठीक है, ये जरा समझने की जरा थोड़ी गहरी बात है इसके अंदर, ठीक है. यहाँ पर अमेला सालेहन का मतलब ये नहीं है कि अब उसने जो है वो टोपी पहन ली और शलवार कुर्ता पहन लिया और तस्बीह हाथ में ले ली और जो है वो मस्जिद के आगे पीछे, मस्जिद है जाना आना, मस्जिद के दौड़ है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद, और जो है वो खूब जो है वो यानी सदका खैरात करना शुरू कर दिया और नफरें पढ़नी शुरू कर दी और वजीफे पढ़ने शुरू कर दिए, तो अब जो है ना उसकी तौबा कबूल हो जाएगी. नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं होती. बात समझाना ये मकसूद है कि इतना करने की शर्त नहीं है कि जी जब तक इतना नहीं किया उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी, बल्कि शर्त यह है कि कोई ऐसा अमल करे कि जिससे उसकी संजीदगी जाहिर होती हो तौबा के ऊपर. ठीक है, क्या मतलब इसका, इसके ऊपर कोई मिसाल अगर आप देना चाहे, क्या मतलब, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस, कोई एग्जाम्पल कोई देना चाहेगा जब तक इन्होंने लिखा है उसको पढ़ते हैं कि कभी कंपनीज में मिक्स्ड कल्चर होता है और उसमें ये न्यूट्रल साइड लेना पड़ता है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, वहां फिर ऐसे डिस्कशन होते हैं अच्छे लोग और बुरे लोग, कौन फिर उन्हें कैसे जवाब दिया जाएगा और इनको कैसे अवॉइड करें कि मदर टेरेसा या इन जैसे लोग जन्नत में जाएंगे या दोजख में जाएंगे. देखें, ये जो डिस्कशन में आप फंसते हैं ना, ठीक है, ये फंसने की वजह ही ये बनती है कि आप पहले से ही जो है ना वो डामाडोल होते हैं. ठीक है, आप पहले ही जो है ना वो दीन और दुनिया को साथ साथ रहने वाले होते हैं. ठीक है ना, हालांकि दीन आगे होना चाहिए, दुनिया पीछे होनी चाहिए. दीन दुनिया साथ साथ का क्या, आप क्या दीन के साथ तमाशा कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं जब ये बोलते हैं कि दीन और दुनिया साथ साथ है. एक चीज जो है वो जन्नत में ले जाने वाली, एक चीज जहन्नुम में ले जाने वाली, और आप कहते हैं दीन और दुनिया साथ साथ. ठीक है ना, तो ये दीन की हतक और रुसवाई है. ठीक है, जब भी इंसान कोई बोलता है या जब इंसान अपनी जिंदगी में इस तरीके से चलना चाहता है, सबको साथ लेके चलना चाहता है, ठीक है ना, तो जो ऐसा शख्स होता है ना जो कि यानी ही वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेबल, ही वॉन्ट्स टू बी यानी लोग उसको बड़ा ऐसा समझें कि भाई इससे तो जो है ना वो हम यानी इसको तो हर किस्म की डिस्कशन में हम घसीट सकते हैं, ये नहीं कि हम इससे हर बात कर सकते हैं, वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ना कि हाँ भाई इस बंदे से हम पूछ सकते हैं, इस बंदे से गाइडेंस ले सकते हैं, जिस मामले में भी हम चाहें हम इससे गाइडेंस ले सकते हैं, ये एक अच्छी अच्छी पर्सनालिटी होती है. लेकिन हम ये पर्सनालिटी नहीं होते कि लोग हमसे गाइडेंस लेने में, हेल्प लेने में कंफर्टेबल फील करें, नहीं हम ये नहीं होते, बल्कि हम ये बनना चाहते हैं कि लोग हमसे खुल करके जिस किस्म का भी बकवास करना चाहें वो कंफर्टेबली हमसे बकवास कर सकें, हम ऐसे बन के रहना चाहते हैं. ठीक है ना, तो भाई ये हमारा गुनाह है कि हम अगर ऐसे बन के रहना चाहते हैं, है ना, हम वी वॉन्ट टू चिल विद एवरी वन, वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एवरी गैदरिंग, वी वॉन्ट टू बी हेल्ड एज अ वेरी फ्रेंडली बाय एवरी वन, तो ये आपका गुनाह है. आप क्यों क्यों उस तरह से क्यों ऐसे रहना चाहते हैं. ठीक है ना, तो जब हम इस किस्म का गुनाह करते हैं ना तो फिर हमें सजा मिलती है कि हम इन डायलॉग्स के अंदर ना फंसाए जाते हैं. बात समझ में आ रही है, ये सजा होती है कि हम इन डायलॉग्स के अंदर फंसाए जाते हैं, और इसमें जब हम फंस जाते हैं तो फिर हम प्रेशर में आकर के कुफ्रिया कलमात बक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ईमान भी जाया हो सकता है, है ना, ये हमारी सजा होती है सर. ठीक है, तो हमें जो है ना वो जो हमारा असल गुना था ना, असल गुना, हमें उस असल गुना से तौबा करने की जरूरत है. तो आपके सवाल के जवाब में आपको ये नहीं दे सकता कि नहीं जी उस वक्त ये करें, वो रहता ना वो पैच पैच वर्क टाइप के जवाब, वो नहीं दे सकता, ठीक है, बल्कि इसका हल ये है कि आप ऐसे बंद करके रहें कि कोई आपके साथ इस किस्म की शुगलबाजी कर ही ना सके। और ऐसे लोग हैं इसी दौर इसी जमाने में आप ही के मुल्क के अंदर ऐसे लोग भी हैं, कोई उनसे इस किस्म की बकवास नहीं कर सकता कि मदर टेरेसा के बारे में बताओ कि वो जन्नत में जाएगी कि जहन्नुम में जाएगी, है ना। ये मौलवी टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो वाकई सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजार रहे होते हैं ना, उनके साथ कोई इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपने आप को वैसा बनाए ना, आप क्यों जो है वो यानी बैन बैन रहना चाहते हैं, है? इधर भी और उधर भी दोनों को साथ ले ले करके चलना चाहते हैं, ये आपकी गलती है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो जरा अपने आप को एक तरफ करें ना पहले, पूरे के पूरे दीन की तरफ हो ना। उदखुलु फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाएं। ये आधे साधे शादे जो दाखिल होते हैं ना, उसकी वजह से फिर फंसते हैं इस किस्म के इशूज के अंदर। तौबा के बाद फराइज की पाबंदी और मुनकरात से बचना हो रहा हो। अच्छा नहीं ना, ये इतना आसान काम नहीं है ना भाई, फराइज से की पाबंदी और मुनकरात से बचना, ये तो फिर जब इस्तकामत मिलती है तो उसके बाद फिर ये वाला मामला होता है, ठीक है। तो ये यानी आपने जो लिखा है वो एक तरह से वो थियोरेटिकली सही भी है, लेकिन हम यहाँ पे आसान बना करके पेश करना चाहते हैं ना, ताकि कोई ये ना समझे कि भाई मैं तो अभी तक इस्तकामत वाला नहीं बना तो मेरी तौबा ही कबूल नहीं हुई है, तो उसके अंदर फिर मायूसी आएगी, शैतान उसको फिर मायूस करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ना इसको इतना मुश्किल जरा नहीं बनाना चाह रहे हैं, बल्कि सादा, और इसके लिए फिर मिसालें भी मौजूद हैं। लाइक इफ समवन फास्ट फॉर अ डे फॉर हिज गुनाह विल दिस बी कंसिडर्ड एज दैट अमल, ठीक है, ये एक अमल बन सकता है कि आप जो है वो अपने गुनाह की वजह से एक रोज़ा रख लें, जिन गुनाहों में मुब्तला था उनको छोड़ दें। हाँ, तो इतना आसान काम की थोड़ी है अपने सारे गुनाहों को छोड़ देना। अपने माहौल को बदलें, जिस माहौल में ख़राब हुआ उसको छोड़ दें। हाँ, ये एक बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है, कि आहिस्ता आहिस्ता ना इसके ऊपर काम शुरू कर दे, पहले दिन से इसके ऊपर काम शुरू कर दे कि जी माहौल मैंने चेंज करना है, अब मैंने अपने पुराने दोस्तों में वापस नहीं जाना है। इतना आसान नहीं है ये भी, इसमें टाइम लगेगा, इसके पुराने दोस्त उसको खींचेंगे और नई जगह पे अपनी यानी अपना अपनी जगह बनाने के लिए इसको वक्त लगेगा, नई जगह पे ना नए लोगों के साथ, ठीक है। शेख कामिल की निगरानी में इस्लाह करे, यानी इस्लाही ताल्लुक बना लेना किसी शेख के साथ और उनकी निगरानी में फिर यानी मेहनत शुरू कर देना, अपना काम शुरू कर देना, ये एक बहुत कंफर्म अमल है अल्लाह ताला को दिखाने के लायक कि देखें अल्लाह मैं सीरियस हूँ तौबा के बारे में, ठीक है ना। जब ही तो बैत करना सुन्नत, हमारे मशायख जो है क्यों इस रास्ते के ऊपर इतना दादा करते हैं कि भाई ये सुन्नत है, इसके जरिए से इंसान के लिए गुनाहों को छोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि आप इस अपने अमल से जो इस्लाही ताल्लुक वाला अमल होता है ना, इससे अल्लाह ताला को अपनी सीरियसनेस दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वाला अमल, और दूसरा ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा शेख मौजूद नहीं है, ठीक है ना, कोई अब नहीं मिल रहा भी आपको अवेलेबल हर हर वक्त, तो थोड़ी हर जगह मशायख अवेलेबल होते हैं, तो आप जो है वो वैसे ही अपनी यानी अपने माहौल तब्दील करने की, जैसे कि वो 100 बंदे के कातिल उसने किया था, गया था ना आमिल के पास, आलिम के पास, है ना, और आलिम से उसने मशवरा किया था ना कि मैं क्या करूँ, तो ये उसका अमल था दिखाने के लिए अल्लाह को कि अल्लाह मैं संजीदा हूँ अपने तौबा के बारे में, ठीक है ना। फिर अब आलिम ने उसको जो कहा कि तुम अपनी बस्ती तब्दील कर लो, उसने सफर भी शुरू कर दिया, कौन सी उसने नफलें पढ़नी शुरू कर दी थी, कौन से उसने रोजे रखने शुरू कर दिए थे, कौन से वो उमरा उमरा करने के लिए चला गया था, कुछ किया था उसने, कुछ भी तो नहीं किया था ना, सिर्फ आलिम से जाकर के बात करी थी और उसकी बात के ऊपर अमल की कोशिश शुरू कर दी थी, अमल पूरा भी नहीं हुआ था उसका, आधे रास्ते से पहले ही उसको मौत आ गई थी कुछ रवायात के मुताबिक, लेकिन अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली ना, जन्नत का फैसला फरमा दिया उसके लिए। तो इतना आसान है ये, ठीक है ना, ये नेकी पर इस्तेकामत तो बहुत आगे की चीज होती है भाई, ठीक है। तो उसकी परवाह ना करें, अपने इन छोटे छोटे अमलों को देखें ना कि क्या आप सीरियसनेस दिखा भी रहे हैं कि नहीं। After regretting, he will make sincere intention not to repent it and he will miss the next obligatory prayer. लेकिन अभी तो बहुत मिस होंगी। अभी तो वो बहुत फजर में कजा होंगी, इतने आसानी से फजर की पाबंदी, बल्कि इवन दिन की नमाजों की पाबंदी इतने आसानी से नहीं मिल जाती, ठीक है ना। तो यानी अचीवेबल गोल्स जो है ना, वो यही है कि बड़ों से जाके मशवरा कर ले, किसी अहले इल्म से मशवरा करे, और वो जो मशवरा दें उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे। यही अचीवेबल एंड इजिली एक्सेप्ट, यानी विद इन रीच, रीचेबल टारगेट है, ठीक है ना। और यही रीचेबल टारगेट अल्लाह ताला की रहमत के जोश में आ जाने के लिए काफी हो जाता है, ठीक है। दोबारा पलट कर इस बुरे अमल की तरफ लौटने से डरना और बचने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते रहना, अगर फिर से हो जाए तो बहुत नादिम होना कि मैं बच ना सका। वल्लाहु आलम जी। 99 खून के कातिल ने तौबा के बाद, हाँ बिल्कुल माशाल्लाह आप किसी पॉइंट पे पहुंचे थे। हाँ यही मिसाल मेरी मुराद थी, करने के अजम और गुनाह के माहौल तब्दील करना, यानी हिजरत करना गुनाह के माहौल से। जी बिल्कुल ठीक है जी। तो ये बस ये पैराग्राफ मुकम्मल करके 10वीं सिफत से पहले क्लास खत्म कर देते हैं कि खुलासा। हाँ तो ये तो खैर हम पढ़ चुके हैं ना कि भाई जब इस तरीके से ना कोई तौबा कर ली, और तौबा के बाद अपने अमल की भी ऐसी इसलाह कर ली कि उसके अमल से तौबा का सबूत मिलने लगा, तो ये तौबा भी इंदल्ला मकबूल हो जाएगी। वही जो बातें हो चुकी हैं अब, और बज़ाहिर इसका फायदा भी वही होगा जो पहली आयत में बताया गया है कि इसके सैयाद को हसनात से बदल दिया जाएगा। अल्लाह के मखसूस और मकबूल बंदों की खास सिफात का बयान ऊपर से हो रहा था, दरमियान में गुनाह के बाद तौबा कर लेने के अहकाम के बयान आया, इसके बाद बाकी सिफात का बयान है, और फिर उसके बाद 10वीं सिफत जो है वो लजीन अला यशदून अज़ूर, फिर ये सिफात बयान होनी शुरू हो जाती है कि वो ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ठीक है। क्या लिख रहे हैं आप कि जिस तरह फ्यूचर हाउस में, क्या ब्यूचर, फ्यूचर हाउस में रहते हुए बदबू, अच्छा बुचर हाउस में रहते हुए बदबू का एहसास नहीं होता और माहौल तब्दील करते करते ही एहसास होने लगता है। जी हाँ बिल्कुल, आप मछली की, जहाँ पे मछलियाँ बिकती हैं ना, तो आप बाहर से जब एंटर होते हैं तो फिर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो ठहरना ही मुमकिन नहीं है, लेकिन आप 5 मिनट जरा वहाँ पे मछली का भावताव करें, देखें कौन सी मछली आपको खरीदनी है, एहसास ही खत्म हो जाएगा उन मछली की बदबुओं का, ठीक है ना। ये तो हमारे रोजमर्रा के मुशाहदे होते हैं ना इस तरह से, तो यही गुनाह का भी मामला होता है। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।